रज्जु देश में बाहर गई, जानते वृत्ति रूप से चेतन भी बाहर है। की कह रहे हो? वो कह रहे वृत्ति जो अंतःकरण की वृत्ति निकली वो नेत्र द्वारा गई जिससे रज्जु गई है, ठीक है ना। वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई जिथे रज्जी रस्सी पई है, अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकल के उथे पहुंची, ठीक है। वृत्ति उप चेतन भी बाहर है, और वृत्ति उपित चेतन कहाँ है? और वृत्ति दे बच्चे भी बाहर ही है, जहां ते सर्प का आसरा बने हैं। तिनका जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। कड़ा जो कड़ा, जितना कड़ा होगा उतना घटाकाश होगा, ये तो समझ लगी ना। जितना कड़ा है तो उतना ही की होगा घटाकाश, तो जितना अंतःकरण है उतना क्या होगा साक्षी, साक्षी भी उतना ही होगा। अंतःकरण जितने देश में अंतःकरण है उतने में आया जो चेतन उन्हें की कहेंगे साक्षी, ठीक है ना। तो जितने देश में कड़ा है उदे विच आया जो आकाश उन्हें की कहेंगे घटा आकाश। यही वो कह रहे हैं, जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्ति स्वरूप परिणाम को प्राप्त होवे है, जाते वृत्ति उपित चेतन साक्षी है, ठीक है, जाते ज्ञान का आसरा बने हैं। रज्जु का जब साक्षात्कार होवे, साक्षात्कार मने प्रत्यक्ष ज्ञान, जिन प्रत्यक्ष पंजाबी कहे ना प्रत्यक्ष ज्ञान, रज्जु का जब साक्षात्कार होवे तब रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक होवे हैं। जाते रज्जु के ज्ञान से सर्प और तांके ज्ञान की निवृत्ति भी बने हैं, ठीक है। ये कह रहा है, और कह रहा है जैसे वृत्ति उपित चेतन रज्जु उपहित चेतन जदों एक देश में होंगे तब रज्जु का ज्ञान होगा, सर्प की निवृत्ति होगी, भ्रांति जिहड़ी है भुलेखा चक्या जाएगा। ऐसे ही जब वृत्ति बनी अंदर, अंतःकरण कहाँ है? अंदर। ते अंतःकरण की वृत्ति बनी केड़ी? ब्रह्माकार, मैं ब्रह्म हूँ। ते ब्रह्म कहाँ है? साक्षी, वो भी अंदर। उदा आवरण भंग करना वृत्ति का प्रयोजन है, साक्षी स्वयं प्रकाश, उसे चिदाभास की जरूरत नहीं है। ब्रह्माकार, मैं ब्रह्म हूँ। ते ब्रह्म कहाँ है? साक्षी, वो भी अंदर। उदा आवरण भंग करना वृत्ति का प्रयोजन है, साक्षी स्वयं प्रकाश, उसे चिदाभास की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जहां एक रज्जु में दस पुरुष को, किसी को सर्प, किसी को दंड, किसी को माला, किसी को पृथ्वी की दरार और किसी को जलधारा, इस रीति से भिन्न भिन्न प्रतीति होवे, अथवा सर्व को सर्प ही प्रतीत होवे, तहां जहां पुरुष को रज्जु का साक्षात्कार होवे है, ताही की वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होवे है। जाते रज्जु ज्ञान नहीं होवे, जाको रज्जु ज्ञान नहीं होवे, ताके अध्यास की निवृत्ति होवे नहीं। जाते वृत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है, रज्जु आदिक विषय उपहित चेतन नहीं। की कह रहा है ये? दसो की कह रहा है? कह रहा है एक रस्सी पई है मंद अंधकार, दस बंदे खड़े है, एक नु भुलेखा पै रहा, एक कह रहा वो सर्प है भाई, दूसरा कह रहा नहीं नहीं सर्प नहीं लग रहा, यह लग रहा जैसे पानी डुलिया हो धारा च नहीं बन जाती टेढ़ी मेढ़ी, वो बनी है। दूसरा कह रहा नहीं ये लगता पृथ्वी की दराड़ है, पृथ्वी पाट नहीं जाती, त्रेड़न जी पै जाएँ, वो लगता एक कह रहा पृथ्वी की दराड़ है, दूसरा कह रहा है दराड़ नहीं है तो लगता माला टुट गई पई है। दस पुरुषा दस न अलग अलग प्रतीति हो रही है, दस प्रकार की भ्रांति हो रही है। तो वो कह रहा दसा की भ्रांति जी है वो कदों एक रज्जू का ज्ञान हो गया, ठीक है, एक रज्जू का ज्ञान हो गया तो वो जेडे अंदर अध्यास है वो निवृत्ति होगी, बाकिया की नहीं होगी। कहना यह चाह रहा है जिसको ज्ञान होगा उसका प्रपंच नाश होगा, बाकी बनिया रहेगा बाकियों का। हाँ, ਉਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ
ਇਸ ਲਈ ਰੱਜੂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਜੂ ਤਾਂ ਰੱਜੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਾੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੇਤ ਵੀ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੇਤਨ, ਰੱਜੂ ਉਪਹਿਤ ਚੇਤਨ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਪਹਿਤ ਚੇਤਨ, ਰੱਜੂ ਉਪਹਿਤ ਚੇਤਨ ਏਕ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲਪਿਤ ਸਰਪ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਜੂ ਉਪਹਿਤ ਚੇਤਨ ਕੋ ਸਰਪ ਡੰਡ ਆਦਿ ਕਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਮਾਨੇ, ਤੋ ਦਸ ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਪਦਾਰਥ ਸੋ ਏਕ ਕੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਚਾਹੀਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਜੂ ਉਪਹਿਤ ਚੇਤਨ ਕੋ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਰੀਤੀ ਸੇ ਤੋ ਜਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਚੇਤਨ ਮੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਰੀ ਰੀਤੀ ਸੇ ਤੋ ਜਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਚੇਤਨ ਮੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਸੋਈ ਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਪਨ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਸਪਨ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਪਨ ਕਿਹਦਾ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਸਪਨ ਆਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਝੀ ਸਰਪ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਰਪ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ? ਉਹ ਰੱਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੈ ਕਿਆ? ਉਹ ਰੱਸੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਆ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਨਕਪੁਰ ਧਾਮ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਗਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਸੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਥੁਰਾ ਆਏ ਆ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸੇ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਵਾਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਬਾਹਿਰ ਸਰਪ ਆਦਿਕ ਔਰ ਤਿਨਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਪਿਤ ਚੇਤਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਸਪਨ ਮੇਂ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਤਿਨਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੀ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਿਤ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਸਪਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। जहां प्रकार ते सत असत से विलक्षण। देखो ये अनर्वचनी ख्याति चल रही है ना, वो यही कह रहा है जहां प्रकार ते सत असत से विलक्षण, जो अनर्वचनी अविद्या का परिणाम अनर्वचनी सर्प आदि के तिनकी ख्याति कही है प्रतीति और कथन, सो अनर्वचनी ख्याति कही है। ये अनर्वचनी ख्याति मैंने वचन के द्वारा जिन्हों आप नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते भी सत्त होवे, सर्प सत्त होवे रस्सी दे विच, ते जदों रस्सी का ज्ञान हो जाता उदो नहीं दिसना चाहिए, जो रस्सी का ज्ञान हो गया उदो कितने गया फिर वो, जे सत्त होंदा तो उदो भी दिसना चाहिए सी, उदा बाद नहीं होना चाहिए, कहण दा तात्पर्य पे रस्सी दे विच सप सत्त होवे उदा बाद नहीं सी होना चाहिए, मिथ्या होवे ते मिथ्या दी प्रतीति नहीं होंदी बई, मिथ्या दी प्रतीति नहीं होंदी, जैसे बंदिया पुत्र शश सिंह, इस वास्ते जे सत्त सीगा ते पुरश डर के दौड़िया, ते जे मिथ्या सी ते बाद हो गया, ते फिर क्या होया अनर्वचनी, ना उन्हूं सत्त कह सकते आप ना असत्त कह सकते, सत्त असत्त से विलक्षण जो होवे उन्हूं कहांगे अनर्वचनी ख्याति। सत्त असत्त से विलक्षण भी सत्त, सत्त विलक्षण क्या होगा असत्त, असत्त से विलक्षण क्या होगा सत्त, भी सत्त दे उल्ट की होगा असत्त, असत्त दे उल्ट क्या होगा सत्त, वो तो कहते ना दोनों से परे ना सत्त कह सको ना उन्हूं असत्त कह सको, इन्हों दोनों ते जो परे है उन्हों करेंगे अनर्वचनी ख्याति। ठीक है चलो, अब शिष्य आवाज फिर कर रहा है, अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है, अब शिष्य प्रश्न कर रहा, फिर शिष्य गुरु नु प्रश्न करेगा, जह मिथ्या प्रतीत है जामे जगत अपार, सो भगवान मोको कहो को जा को आधार। शिष्य कह रहा है जह मिथ्या प्रतीत है जामे जगत अपार, ये अपार पारवार से रहित जो जिसका पारावारा कोई आदि अंत, पारावारा मैंने आदि अंत नहीं दिखाई दे रहा जिस संसार का, और आप कह रहे हो मिथ्या है, मिथ्या भी प्रतीत हो रहा है और इसका पारावारा भी कोई नहीं, सो भगवान मोको कहो को जा को आधार, इसका आधार कौन है, ये किदे आसरे टिकिया होया भाई, सप किदे आसरे सी, रस्सी दे आसरे, रस्सी ना हो तो सप कितना दिखाई दे दे, ये फिर जेड़ा परपंच सानू दिखाई दे रहा है किदे आसरे है, शुद्ध ब्रह्म दे आसरे, आत्मा दे आसरे भी कह सकते हैं क्योंकि शुद्ध ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है। ठीक है ना, अब ये शिष्य का प्रश्न हो गया, अर्थ स्पष्ट है, अब इसका गुरु उत्तर दे रहा, मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान तू है, देख लो वो कह रहा मिथ्या जगत का आधार भगवान ब्रह्म कुछ नहीं है, तू ही है, तू क्यों भाई, बोलते तू तो ब्रह्म ही है ना, तो आधार कौन है, ब्रह्म ही तो है, तो जे तू ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म तेनू आधार कह, तो भगवान ब्रह्म कुछ नहीं है तू ही है, तू क्यों भाई, बोलते तू तो ब्रह्म ही है ना, तो आधार कौन है, ब्रह्म ही तो है, तो जे तू ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म तेनू आधार कह, तो की फर्क होया, क्यों प्रधान जी, ठीक है ना, केड़ी माड़ी गल है ना, सत नू सत कहना कोई गलत गल थोड़ी है। अब गुरु का वचन सुन लो, तब निज रूप अज्ञान ते है मिथ्या जग भान, अधिष्ठान आधार तू रज्जू बजंग समान। ठीक है, अब कह रहा है तब निज रूप अज्ञान ते, तब मैंने हे शिष्य, तब मैंने तेरे निज रूप मैंने अपने स्वरूप दे अज्ञान ते, तू अपने स्वरूप नू नहीं जानता उस अज्ञान ते है जग है मिथ्या जग भान, ये जग मिथ्या प्रतीत हो रहा है नहीं, क्यों प्रतीत हो रहा, क्योंकि तेनू अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया, इस वास्ते जग प्रतीत हो रहा है। अधिष्ठान आधार तू रज्जू बजंग समान, अधिष्ठान भी तू एदा आधार भी तू है, जैसे मिथ्या सर्प का अधिष्ठान कौन है, रज्जू उदे समान उदे बराबर। देखो पहला क्या सी, रज्जू उपित चेतन है अधिष्ठान, आप रज्जू कह रहे हैं, पहला की क्या सी, आप की कह रहे हैं रज्जू है ना, ऐसा क्यों भाई? इधर भी सुनो,
टीका है शिष्य, तेरा जो निज रूप कहिए ब्रह्म रूप करके अज्ञान तिस्ते मिथ्या जगत प्रतीत होवे है, जाते जगत का आधार और अधिष्ठान तू है।
ठीक है, की कह रहा हूं सुनो, हे शिष्य तेरा जो निज रूप, निज रूप मैंने आगे इसका व्याख्या कर रहे निज रूप की, निज रूप कहिए ब्रह्म रूप करके अज्ञान, जो तू अपने आप नु ब्रह्म नहीं समझ रहा, जीव समझ रहा, हाँ तू अपने आप नु ब्रह्म रूप नहीं समझिया, की समझ लिया, जीव समझ लिया, इस ये जड़ा अज्ञान हो गया तेनू, यह तेरे अज्ञान तिस्ते मिथ्या जगत प्रतीत होवे है, इसलिए यह मिथ्या जगत सत नहीं है, मिथ्या जगत प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जाते जगत का आधार और अधिष्ठान तू है, जैसे रज्जू के अज्ञान ते मिथ्या भुजंग प्रतीत हो, भुजंग मैंने सप, भुजंग मैंने हाँ मिथ्या भुजंग प्रतीत होवे है, तहां मिथ्या भुजंग का आधार और अधिष्ठान रज्जू है, यद्यपि मिथ्या सर्प का अधिष्ठान मुख द्वितीय पक्ष में वृत्तिपित चेतन है और प्रथम पक्ष में रज्जुपित चेतन है, किसी पक्ष में अधिष्ठान नहीं, रज्जू रज्जू किसी पक्ष में भी, किसी पक्ष में रज्जू अधिष्ठान नहीं है, क्या है, एक पक्ष में वृत्ति उपित चेतन कहता, एक में क्या क्या रज्जू उपित चेतन कह देता, जहां रज्जू कह देता, ये क्यों, इदा हुण समाधान के, तथापि प्रथम पक्ष में चेतन में अधिष्ठान पने की उपाधि रज्जू है, जाते स्थूल दृष्टि से रज्जू अधिष्ठान कहे हैं, तैस है स्थूल दृष्टि से कह देता है ना, ये नहीं क्या सच्ची हुई है, मतलब मोटी दृष्टि कह देता, जैसे पेड़ चंद्रमा दिखाना तो पेड़ देख है, पेड़ ते थोड़ी चंद्रमा बैठा कोई, तैसे मिथ्या भुजंग का अधिष्ठान तथा आधार रज्जू है, तैसे मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार तू है। ठीक है, आत्मा का सामान्य रूप आधार और विशेष रूप अधिष्ठान, अब आधार अधिष्ठान में की अंतर है भाई, आधार किनू कहांगे, अधिष्ठान किनू कहांगे, है ना, एक ही उन्हें कहते ना गुरु ने, आधार भी तू है अधिष्ठान भी तू है, दो चीजा हो गई, तो फिर ये इन्हें च फर्क दसना चाहिए, अधिष्ठान किनू कह रहे जे तुसी और आधार किनू कह रहे जे, आधार का तो पता लग जाता सारे नू, आसरा टेक है ना, तो अधिष्ठान का की पता चलेगा, कहते अधिष्ठान उन्हों केंद्र आ जेदे ज्ञान ना भ्रांति की निवृत्ति हो जाए, अधिष्ठान किनू केंद्र आ जेदे ज्ञान दे नाल अधिष्ठान ज्ञान दे नाल भ्रांति की निवृत्ति होवे उन्हों केंद्र अधिष्ठान, कैसे रज्जू जब मैं सर्प प्रतीत हो गया तो रज्जू का जरा अधिष्ठान, रज्जू की होगी अधिष्ठान, क्यों, क्योंकि रज्जू के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, तो रज्जू होगी अधिष्ठान, आधार आधार भी रज्जू, उदा सामान्य अंश जो आधार है, विशेष अंश अधिष्ठान, असामान्य विशेष में थोड़ा अंतर है, और थोड़ा समझ लेना, जेदे ज्ञान के नाल अधिष्ठान ज्ञान के नाल भ्रांति की निवृत्ति होवे, जेदे ज्ञान के नाल भ्रांति की निवृत्ति होए उन्हों कहांगे अधिष्ठान, हाँ जहां स्थान में जह रहस्य है, अब की इसमें गुप्त रहस्य क्या है ये सुन लो, जैसे जेवरी के दो स्वरूप हैं, जैसे जेवरी मैंने रज्जू, देखो कभी जेवरी आएगा कभी कुछ रज्जू, वो रस्सी समझ लेना उन्हों भाई, ठीक है ना, शास्त्र की भाषा है, जहां स्थान में जह रहस्य है, जैसे जेवरी के दो स्वरूप हैं, एक तो सामान्य रूप है और दूसरा विशेष रूप, सामान्य रूप क्या है ते विशेष रूप क्या है रज्जू का, वो तीन वाल जे जदों सानू वो तीन वाल दिखाई दे देंगे तो सर्प दिखाई देगा, फिर
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ? ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਰੱਜੂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਇਦਮ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਰੱਜੂ ਹੈ। ਇਦਮ ਮੈਨੇ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਮ ਅੰਸ਼, ਸਮਾਨਿਆ ਅੰਸ਼। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਜੂ ਹੈ। ਜੈ ਸਰਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜੈ ਸਰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਸੇ ਮਿਥਿਆ ਸਰਪ ਸੇ ਅਭਿੰਨ ਹੋਏ ਕੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਦਮ ਰੂਪ ਸੋ ਸਮਾਨਿਆ ਅੰਸ਼ ਕਹੇ ਹੈ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ। ਹੈ ਹੈਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ, ਹੈਪਣਾ। ਔਰ ਰੱਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ? ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਾਂ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨਿਆਂਸ਼। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਪ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਰਪ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ, ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਰਪ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਤੂ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਪ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸੋ ਰੱਜੂ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਜੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਜੂ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ, ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੇ ਸਮਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੱਤ ਰੂਪ ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਤ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਹੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ। ਇਹ ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ ਸਭ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਹੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਹ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਗੀ? ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੂੰ, ਇਸ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਅੰਸ਼, ਮੈਂ ਹੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤ ਅੰਸ਼। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਤ ਰੂਪ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੰਗਤਾ ਕੁਟਸਥਤਾ ਨਿੱਤ ਮੁਕਤਤਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੰਗਤਾ ਮੈਨੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਬਈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਬਣੇਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਨਿਰੂਪ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼? ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਿਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
और दूसरा क्या कुटस्था, कुटस्थ मैंने लोहार दी अहरन, जैसे लोहार दी अहरन है, लोहार अनेक संद बना बना के ढेर लगा देंदा अपनी पूरा जीवन, अहरन दा कुछ बिगड़िया अहरन ऐसी दी ऐसी पई। ऐसे ये मन रूपी जो लोहार है ये आत्मा रूपी अहरन ते पता नहीं किनिया घाड़ना घटदा रहिंदा दिने बैठा बैठा, सपने विच भी नहीं टिकदा, पर आत्मा दा कुछ बिगड़िया, आत्मा लोहार दी अहरन वांग ज्यों की त्यों है, क्यों कुटस्थ है ना, असंग है, संग होवे तो फिर जन्म मरण रूपी दुख भी होण, दुख नहीं है इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि असंग है, तो संग से प्रतीत हो रहे सानू तो स्फटक मणि की तरह, जे प्रतीत हो रहे हैं तो स्फटक मणि का दृष्टांत दिता सी ना, शायद एदे विच भी आएगा, आगे बहुत प्रकार के दृष्टांत चलणगे, अभी तो शुरू होया ग्रंथ, ठीक है। असंगता कुटस्था नित मुक्त आदिक विशेष रूप है काहे ते, देखो स्थूल सूक्ष्म संगात है, इस रीति से स्थूल सूक्ष्म संगात की भ्रांति समय भी मिथ्या संगात से अभिन्न होए के सात रूप प्रतीत होवे है, जाते आत्मा का सात रूप सामान्य रूप कहिए है, ठीक है। की कह रहे हो, स्थूल सूक्ष्म संघात मैंने इकट्ठ समूह, स्थूल सूक्ष्म कारण भी ले लेना साथ में, ये सारे का जो इकट्ठ है कि यह स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय जदों अज्ञानी पुरुष है उदों भी प्रतीति हो रही है, ठीक है। मिथ्या संघात से अभिन्न हो के आत्मा की मिथ्या संघात के नाल एकमिक हो के प्रतीति हो रही है, अभिन्न मैंने, ठीक है ना, अभिन्न मैंने स्थूल सूक्ष्म कारण जिहड़ा शरीर है उन्हों अपना स्वरूप आत्मा स्वरूप समझ करके जदों प्रतीति हो रही है, तो कदों प्रतीति हो रही है भ्रांति काल में, वो केड़ा रूप हो गया, सात रूप प्रतीत हो गया, जाते आत्मा का सामान्य रूप सात रूप सामान्य रूप है, और स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय आत्मा का असंग कुटस्थ नित मुक्त स्वरूप प्रतीत होवे है, नहीं देख लो की कह रहा है, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय आत्मा का असंग कुटस्थ नित मुक्त स्वरूप प्रतीत होवे नहीं, भ्रांति समय ये जिहड़े आत्मा दे स्वरूप है केड़े कुटस्थ नित मुक्त असंगत ये प्रतीत नहीं होणगे अज्ञानी नू, ठीक है ना, किंतु असंग आदि का स्वरूप आत्मा की प्रतीति हुए ते संगात भ्रांति दूर होवे है, जदों ये प्रतीत हो गया मैं असंग हूँ मैं कुटस्थ हूँ ते जड़ी स्थूल सूक्ष्म शरीर नू अपना समझ रहे हैं उन्हां दी निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। जाते असंगतता कुटस्थता नित मुक्तता और व्यापक आदि का विशेष रूप है, सर्व भ्रांति में सामान्य रूप आधार कहिए हैं और विशेष रूप अधिष्ठान कहिए हैं, समान रूप तो हो गया आधार और विशेष रूप की कहेंगे अधिष्ठान, ठीक है। जैसे सर्प का आसरा जो जेवरी ताका सामान्य इदम स्वरूप सर्प का आधार है और विशेष रज्जु स्वरूप अधिष्ठान है, तैसे मिथ्या प्रपंच का, देखो रज्जू दा लैके फिर प्रपंच ते आ रहे हैं, तैसे मिथ्या प्रपंच का आसरा जो आत्मा ताका सामान्य सातरूप प्रपंच का आधार है और असंगता आदि का विशेष रूप अधिष्ठान है, इस रीति से आधार और अधिष्ठान का सर्व आत्म नाम सर्व की है असंग आदि का विशेष अधिष्ठान है, इस रीति से आधार और अधिष्ठान का सर्वज्ञ आत्म स्वर्ग, हाँ स्वर्ग आत्म नाम मुनि ने किंचित भेद प्रतिपादन किया है, हाँ सर्वज्ञ स्वर्ग आत्म ऐसे मुनि है उन्होंने इस तक थोड़ा जा भेद दस्या है, पर ये आप नहीं विस्थार पै तो नहीं दिखा रहे ना, जगत दृष्टा आत्मा से भिन्न कहया चाहिए, प्रश्न कर रहा है, जगत जो दृष्टा है ना, दृष्टा कौन है? साक्षी आत्मा। आत्मा से भिन्न कहोगे ना ताहीं ते गल बनेगी। कोई देखण वाला होवे और कोई दिखाई देण वाला होवे। एक देखण वाला है, एक दिखाई देण वाला है, ताहीं ते गल बनेगी। आ तुसीं एक नूं कही जांदे हो आप ही देखण वाला, आप ही दिखाई देण वाला है, ये कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, यही कह रहे हो। जगत दृष्टा आत्मा से भिन्न कहा चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा? शिष्यवाच। अब शिष्य फिर प्रश्न कर रहा गुरु से दोबारा, भगवान मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन? तुसी कह रहे हो संसार जो मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है, ते दा दृष्टा कौन है? इनू देखण वाला भी कोई है मिथ्या नू? ठीक है, भगवान मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन? अधिष्ठान आधार जो दृष्टा होवे ना तौन, जिन्हों तुसी आधार कह रहे हो, अधिष्ठान कह रहे हो, वो तो दृष्टा हो नहीं सकता। तो दृष्टा फिर कोई और ही होगा, एदा वो कौन है दसो सेनू? ये शिष्य ने प्रश्न किया गुरु नू। अब टीका सुनो, इसका अर्थ स्पष्ट है। भाव जे है जगत का आधार और अधिष्ठान आत्मा है, जाते आधार का दृष्टा आत्मा से भिन्न कहा चाहिए। जैसे सर्प का आधार और अधिष्ठान जो रज्जू, ता से भिन्न पुरुष सर्प का दृष्टा है। जैसे रज्जू में सर्प दिखाई देता तो रज्जू सर्प हो गया दृश्य, तो पुरुष उन्हें देखने वाला क्या हो गया? दृष्टा। ऐसे ही वो कह रहा है आत्मा हो गया दृष्टा, और आत्मा से जो भिन्न पदार्थ है वो हो गया दृश्य। तो तुसी आत्मा नु कह रहे हो वो भी दृष्टा है, वही दृश्य है, ये कैसे हो जाएगा? अब गुरु उत्तर देगा। सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है। श्री गुरु रुवाच, मिथ्या वस्तु जगत में जो है अधिष्ठान में कल्पित ते है। वो कह रहे जितने मिथ्या पदार्थ हैं संसार दे विच, जितने भी मिथ्या पदार्थ हैं, कितने हैं? मिथ्या वस्तु जगत में जो है अधिष्ठान में कल्पित ते है। वो सारे अधिष्ठान जो है वो दे विच कल्पित है, कल्पना कर रखी अपन ने, है कुछ नहीं। कल्पना भी कितने कर रखी है? बुद्धि दे विच। जैसे बुद्धि दे विच कल्पना होगी ऐसे सानू संसार दिखाई देगा। कैसे? ऐसे कैसे? जैसा चश्मा लगाओगे, जैसे ताड़ी ऐनक का शीशा होगा, ऐसा ही सारा संसार दिखेगा।